ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज के इस 7 जून के मंगलवार की संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। और आज के कथा में हम सब लोग जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी 3 जुलाई को 2011 रथ यात्रा संपन्न होगी सभी विश्व भर में, खास करके जगन्नाथपुरी में। और इस उपलक्ष्य में अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का सीजन शुरू हो गया है। सब जगह पर जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा, तैयारी सब चालू हो गई है। और हमारे राधा गिरधारी मंदिर में, जो मीरा रोड का मंदिर है इस्कॉन का, उस मंदिर में जगन्नाथपुरी में जिस तिथि को रथ यात्रा होती है, उसी तिथि को उसी समय यहाँ पर रथ यात्रा होती है। जिस समय रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में शुरू होती है, उसी समय फोन करके बताया जाता है कि रथ यात्रा शुरू हो रही है, और उसी समय यहाँ की रथ यात्रा शुरू होती है। ऐसा अद्भुत अरेंजमेंट है। लेकिन प्रभुपाद जी की दया से और कृपा से विश्व भर में साल भर तक सब जगह पर देश विदेशों में जगन्नाथ की रथ यात्रा होती रहती है। मुंबई में कम से कम 20 रथ यात्रा होती है अलग अलग पार्ट में। अमेरिका में कम से कम 25 रथ यात्रा होती है साल भर में। यूरोप में, रशिया में, सब जगह पर होती है। तो प्रभुपाद जी का ये विशेष योगदान है। प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को वो ले गए विदेश में, उसकी भी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हमारे जगन्नाथ भगवान कैसे अद्भुत हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि तो जगन्नाथ जी का जो है हर चीज अद्भुत है। जैसे हम भगवान को जानते हैं, भगवान का विग्रह होता है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, नरसिंह भगवान है, हर एक अपना अपना एक विशेष पहलू है। लेकिन इन सबसे जगन्नाथ भगवान हटके हैं, अलग हैं जरा। तो उनमें क्या क्या अद्भुत चीजें हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये जगन्नाथ जी को आप देख रहे हैं, सब लोग देखिए, सबको दिखाई पड़ रहा है वहां से। ये इनका स्वरूप जो है ना, वो बहुत अद्भुत है। इन स्वरूप के अंदर हाथ है लेकिन पंजे नहीं है, उंगलियां नहीं है, पैर तो तीनों को नहीं है, और बड़ी बड़ी आंखें हैं कि मुस्कान जो है वो यहां से लेके वहां तक कान तक पहुंच गई है। और सुभद्रा मैया का तो हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है, सब शरीर के अंदर चले गए। एक का रंग काला है, एक रंग का गोरा है, एक का रंग का सुनहरा है। इसकी आपको कहानी अगली बार बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के जितने विग्रह हैं, जितने भगवान के स्वरूप हैं, उनमें ये सबसे अलग अद्भुत विग्रह है, सबसे अलग स्वरूप है इनका। और पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं, भौतिक दुनिया में, जन्म मृत्यु वाली दुनिया में, जहां पर लोग जन्म लेकर मर जाते हैं, ये हम लोग उस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया के लोगों के दुखों को समाप्त करने के लिए, उन पर अपनी असीम कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी अद्भुत स्वरूप में इस विश्व में प्रकट हुए। तो ये एक बात हो गई विशेष इनकी। दूसरी बात यह है कि इनका विग्रह लकड़ी का होता है, उसको दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म यानी कि बहुत ही दिव्य लकड़ी। दारू यानी लकड़ी और ब्रह्म यानी परम ब्रह्म भगवान, कि समुद्र से प्रकट हुई थी दिव्य लकड़ी, और उनके द्वारा इनके विग्रह को बनाया गया था। इसलिए जब प्रकट हुए थे तो भगवान के तरफ से वो लकड़ी का निर्माण हुआ था। और आज भी ऐसे दिव्य लकड़ी से, उसका वर्णन आपको अगले प्रवचन में करूंगा कि कैसे उनका विग्रह बनाया जाता है। तो दूसरी बात, विशेष बात है कि उनका विग्रह जो है पत्थर से नहीं बनता है, लकड़ी से बनता है। तीसरी बात यह है कि हम जानते हैं भगवान के विग्रह जब हम स्थापित करते हैं तो कभी उनको हम छू नहीं सकते हैं, है ना। केवल जो पुजारी है, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, जो उपनयन संस्कार हो गए हैं, जिनको जनेऊ पहनाया गया है, जिनको गायत्री मंत्र प्राप्त हो गया है, जिन्होंने बहुत शास्त्र का अध्ययन किया है, ऐसे ही लोगों को भगवान के पुजारी का सेवा मिलता है। और बहुत वो कम लोग होते हैं, अगर 100 भक्त हैं तो उसमें 4 लोग ब्राह्मण दीक्षित होंगे, और उनको भी ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद में बहुत ट्रेनिंग देना पड़ता है, बहुत मंत्र बाय हार्ट करने पड़ते हैं, बहुत रीति रिवाज होते हैं ना, वो नियम कर्म कांड बहुत सारा करना पड़ता है, और उसके बाद में भगवान को भोग लगाना, श्रृंगार करना, आरती करना, ऐसे अद्भुत काम वो कर सकते हैं। और एक बार मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई तो आम आदमी उसको छू नहीं सकता है, केवल दूर से देखना है, उनको दर्शन करना है, बस प्रणाम करना है, दर्शन करना है, प्रार्थना करनी है, जो भी करना है, कुछ अर्पण करना है तो दूर रखना है, फिर वो आके अंदर ले जाएंगे, फिर भगवान को अर्पण करेंगे। लेकिन उनमें सभी विग्रहों में, विश्व में जितने विग्रह है पुरातन, उनमें पांडुरंग विट्ठल जो है वो थोड़े से अनोखे, क्योंकि उनके विग्रह को हम लोग छू सकते हैं। हम जाते हैं ना, आप जाएंगे पंढरपुर को, ऐसा नहीं कि खाली आषाढ़ एकादशी के दिन, साल भर में कभी भी आप जाएंगे वहां पर, तो उनके पैर को आप छू सकते हो, अपना मत्था टेक सकते हो, उनको पैर को प्रेम कर सकते हो, लोग कोई चुम्मा भी लेते हैं उनके पैर का, उनके पैर के साथ आप कुछ भी कर सकते हो प्रणाम के रूप, लेकिन ऊपर नहीं हाथ लगा सकते, सर पे या हाथ पे ऐसा हाथ नहीं लगा सकते, खाली उनके पैर खुले हैं, पैर में सब लोग दंडवत करते हैं, आगे बढ़ते हैं बस। तो वो ज्यादा दयालु विग्रह है, भगवान में जितने विग्रह हैं उनमें अधिक दयालु है वो। तिरुपति भगवान है तो दूर से 1 सेकंड, आधा सेकंड, पौना सेकंड भी देखने को मिलता नहीं, 4 घंटे 8 घंटे 15 घंटे लाइन लगाओ और दर्शन कितना होगा, आधा सेकंड का, और याद भी रहता नहीं क्या देखा आपने, इतना घंटे जिसके लिए खड़े रहे उसका दर्शन आधा सेकंड के लिए भी नहीं हुआ, और उनको क्या देखा वो समझ में भी आता है। तो उनमें से पांडुरंग विट्ठल जो है वो बहुत दयालु है, लेकिन पांडुरंग विट्ठल को आप आलिंगन दे सकते हैं, उनको गले नहीं मिल सकते। हाँ, जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं, साल भर में वो अंदर रहते हैं, साल भर उनको छू सकते नहीं आप, लेकिन रथ यात्रा के दिन और उसके पहले दिन, ये 2 दिन और उसके बाद में रथ से उतरने तक 3रा दिन, 1 दिन रथ यात्रा के पहले नेत्रोत्सव का, 1 दिन रथ यात्रा के दिन और 2रा दिन रथ से उतरते हो और जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, 3 दिन उनको सब लोग गले मिल सकते हैं, उनके रथ पे चढ़कर उनको पूरा आप आलिंगन लगा सकते हो, पूरा एकदम फुल फ्लेज। इसलिए पूरे विश्व में ऐसे कोई भगवान का विग्रह नहीं है जो इतना दयालु हो, अपने भक्तों को गले मिलने के लिए अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं, मंदिर छोड़ के भगवान की हजारों मंदिर से मूर्तियां बाहर निकलती है, लेकिन जो मूल विग्रह है वो कोई बाहर नहीं निकलता है, उसे कहते हैं उत्सव मूर्ति। अगर बड़ी मूर्ति होगी तो एक छोटी मूर्ति सामने होती है, उसी को शोभा यात्रा में, मिरणमुख में, जुलूस में और कोई उत्सव में लेके जाते हैं। हमारे उडुपी में भी कहीं भी जाएंगे आप, हर रोज शाम को भगवान बाहर निकलते हैं, गुरुवायूर में, तिरुपति में, सब जगह बाहर निकलते हैं, लेकिन मूल जो मूर्ति है वो उधर ही रहती है, और छोटे विग्रह जो बाहर निकलते हैं उनकी वो परिक्रमा होती है, फूल उतरते हैं, दीपक जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, सब कुछ वो उत्सव मूर्ति के होते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का विशेषता ऐसा है कि जगन्नाथ जी की मूल मूर्ति जो है वही बाहर निकलती है, रथ में बैठ कर विराजमान करके उनका रथ यात्रा होती है, और 9 दिन पूरे मंदिर के बाहर रहकर 10वें दिन लौट के आते हैं, फिर अपनी जगह पर रहकर बैठ जाते हैं, ऐसे अद्भुत उनकी लीला है। दूसरी बात यह है कि इसकी भी कहानी मैं आपको अगले प्रवचन बताऊंगा लाइन से, 1 by 1, सब लोग अभी लाइन से प्रवचन में आ जाना तो आपको ये कथा जो है मिस नहीं हो जाएगी, इसलिए पहले से बता रहा हूं ये कैसे निर्माण हुए इनके, कथा अगले वाले में। उसके अगले वाले में उनकी एक विशेषता है कि दुनिया में अभी जब तिरुपति का विग्रह निर्माण हुआ, प्रकट हुआ, तो आज वही विग्रह है जब से वो प्रकट हुए। अयोध्या में जाएंगे तो राम सीता लक्ष्मण हनुमान के जो विग्रह है वो जब ही हजारों लाखों साल निर्माण हुए थे तभी से वही विग्रह है उधर। पांडुरंग विट्ठल के जो विट्ठल है विग्रह है वही विग्रह अभी तक है, लेकिन जगन्नाथ जी का विग्रह जो है वो हर कुछ साल के बाद में बदली होता है और उनको कहते हैं नव कलेवरम, मतलब कलेवर का मतलब है शरीर, और नव मतलब नवीन, नया। तो हर कुछ साल के बाद में, कुछ फिक्स साल नहीं, उसकी तिथि है, वो तिथि के अंदर कितने 13 साल लगते हैं कभी कभी, कभी 9 साल लगते हैं, कभी 7 साल लगते हैं, कभी 18 साल भी लगते हैं, वो एक चतुर्मास के अंदर वो तिथि बीच में जब आएगी उसी तिथि में उनका नव कलेवर का प्लानिंग होता है और उस साल में पूरा उनका जो पुराना विग्रह है उसको दफनाया जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर उनकी स्मशान भूमि है। जगन्नाथ जी के पुराने विग्रह को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और नए विग्रह में उनका जो नाभि ब्रह्म है, दारू ब्रह्म कहते हैं उसको, मतलब हमारे शरीर में आत्मा होती है ना वैसे, उसमें निकाल के नए शरीर में डाल देते हैं, उसकी प्रतिष्ठापना होती है। ऐसे विश्व में किसी भी मंदिर में किसी भी विग्रह के बारे में नहीं होता है, ये केवल जगन्नाथ जी की विशेषता है। हर कुछ साल बाद नया शरीर प्राप्त होता है उनको और हर साल में एक बार उनका नया पेंटिंग होता है फर्स्ट क्लास। जब तक नया विग्रह नहीं बने हर साल उनका पेंटिंग होता है। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर के जगन्नाथपुरी में कोई उपवास नहीं करता है। सारे मंदिरों में, सारे संप्रदाय के जितने जितने मंदिर है, स्वामीनारायण है, नाथ द्वार है, पुष्टि मार्गी है, निम्बार्क मार्गी है, गौड़िया वैष्णव है, जितने तीर्थ स्थान है, वृंदावन है और बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नीचे क्या कहते हैं उसको, श्रीरंगम है, तिरुपति है, गुरु आयुर है, हर जगह पर हर मंदिर में उपवास का नियम होता है। कुछ कुछ दिन में उपवास करना पड़ता है, एकादशी है, बहुत सारे उत्सव होते हैं उसमें उपवास करना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में एकादशी देवी होती है, हाँ, एकादशी व्रत जो पालन करते हैं हम लोग, उसकी एक देवी है जिसके लिए हम वो व्रत करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। वो देवी के विग्रह को मंदिर के पीछे उल्टा टांग के रखा है। वो भी बांध के रखा है। उल्टा, छोटा सा मंदिर है पीछे, उसमें वो एकादशी देवी को उल्टा बांध के रखा है ताकि जगन्नाथपुरी में कोई उपवास न करे, कोई उपवास नहीं होता है। और भगवान का जो ऐसी विशेषता है उधर कि एकादशी के दिन भी नहीं, सब दिन, साल के जितने भी दिन है, मंदिर में भगवान के 7200 किलो चावल का भोग लगता है। मतलब बना बनाया चावल 7200 किलो को नहीं, 7200 किलो चावल, उसमें दुगना पानी डालेंगे आप, उसको पकाएंगे तो पता नहीं कितना किलो होगा वो। उतना किलो का चावल का भोग लगता है और वो इतना रहता है कि कम से कम 10,000 लोगों को अन्न छत्र में खिलाते हैं उसको, चावल दाल के साथ, सब्जी के साथ। फिर भी बहुत सारा बचता है मट्टी के मटके में, तो सारे होटल वाले लोग उसको खरीद लेते हैं। तो सारे होटल में भी जगन्नाथ जी का चावल महाप्रसाद सबको मिलता है, ऐसा विशेषता है ये। किधर भी आप कोई ढाबे में खाओ, होटल में खाओ, फाइव स्टार में खाओ, टू स्टार में खाओ, झोपड़ी में खाओ, मारवाड़ी ढाबे में खाओ, सब जगह में आपको वो चावल मिलेगा जो जगन्नाथ जी के मंदिर में लगा हुआ है भोग उसका, इतनी विशेषता है। और उसके अगले प्रवचन में आपको बताऊंगा मैं कि जगन्नाथ जी का किचन जो है वो कितना विशेष है। हाँ, अभी सब रहस्य अभी नहीं खोलूंगा, मैं धीरे धीरे खोलूंगा। ऐसा अद्भुत किचन है वो, इसकी मालकिन लक्ष्मी देवी है, उसका पूरा डिटेल वर्णन है, वो एक एक प्रवचन में पूरा नहीं कर सकते, आपको कुछ याद भी रहेगा नहीं और सब खिचड़ी हो जाएगा पूरा, इसलिए मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। लेकिन इनका किचन जो है, ऐसा किचन किसी भी मंदिर में नहीं है, इतना अद्भुत किचन है वो, उसकी मालकिन लक्ष्मी देवी है, अपने नेतृत्व में अपने प्रिय भगवान के लिए वो भोजन बनाती है। और उनकी विशेषता यह है कि पूरे वर्ल्ड में किधर भी मंदिर है ना, तो पुजारी लोग जो खाना बनाते हैं भगवान के लिए वो खाली पेट रहते हैं। पहले भगवान को भोग बनाते हैं, फिर भोग लगाते हैं, फिर भोग निकालते हैं और जब प्रसाद बन के आता है तब वो खाते हैं। लेकिन जगन्नाथ के मंदिर में ऐसा रिवाज है कि सब जो रसोईया हैं, पुजारी, रसोईया बनाने वाले, वो खा पी के पेट भर के आते हैं और उसके बाद में भगवान के लिए खाना बनाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि जब वो बनाएंगे तो उस बनने वाले अन्न के ऊपर उनकी वासना नहीं आनी चाहिए, हाँ, उसके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, तो कैसे भगवान को भोग लगाएंगे। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है उसके, भगवान को भोग लगाने के। इसलिए जगन्नाथपुरी के अंदर एक ही वर्ल्ड में ऐसा मंदिर है, सब पुजारी खा पी के पेट भर के आते, डकार देते हुए खाना बनाते भगवान के लिए। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर में, ऐसा वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, सब मंदिर में, दुनिया भर के मंदिर में जितने भगवान के, नरसिंह भगवान है और उड़पी कृष्ण है और नाथद्वार के कृष्ण है और श्रीरंगम है और आप बताओ नाम जितने हैं, सब मंदिरों में ब्राह्मण की सेवा कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर संस्कार करने के बाद उपनयन संस्कार जनेऊ गायत्री मंत्र शास्त्र का अध्ययन गुरुकुल में शिक्षा इतना सारा करने के बाद में ही केवल उनको पीढ़ी से अंदर प्रवेश मिलता है और वहां सेवा होती है। जगन्नाथ मंदिर दुनिया में ऐसा एक ही मंदिर है जिसमें शूद्र लोग शूद्र जाति के लोग भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने राजा इंद्रदुम्न को आदेश दिया था कि मेरी कौन सी सेवा कौन कौन लोग करेंगे। और ऐसा नहीं कि साल भर में एक ही जाति के लोग सेवा करते रहते हैं, ऐसा नहीं, उसमें चार पांच प्रकार के शूद्र लोग हैं, एक दलित है, एक शबर है और कई प्रकार के जाति है उनकी। तो रथ यात्रा में इनकी सेवा है और अनवसर में उनकी सेवा है, उधर के उनकी सेवा है, उधर गुंडीचा मंदिर में किसी और जाति की सेवा है, रथ बनाने में किसी की सेवा है, रथ यात्रा के समय किसी की सेवा है, ऐसे। लेकिन सब प्रकार के लोग जो है कोई ब्राह्मण नहीं उसके अंदर, ये इनकी विशेषता है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत दयालु है वो, ऐसा नहीं केवल ब्राह्मणों के ही द्वारा अपनी सेवा कर लेते हैं। हाँ, और किसी को सोना नहीं है, खास करके जो जगन्नाथपुरी के लोग हैं उनको सोना नहीं है, कथा में याद रखना है जगन्नाथ आपके भगवान के बारे में कथा हो रही है। तो ये उनकी विशेष कृपा है कि बिना किसी जाति भेद धर्म भेद रंग भेद वर्ण भेद किसी भेद के अलावा भगवान सबसे सेवा लेते हैं। हाँ, और जब वो बाहर आते हैं ना रथ यात्रा के अंदर, साल भर में उनके मंदिर में किसी भी जो हिंदू नहीं है, मतलब क्रिश्चियन है या और कोई सिख है या कोई और जाति का है, किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। और कोई विदेशी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है उनके मंदिर में साल भर के अंदर, उधर बहुत गार्ड खड़े रहते हैं। वो तुरंत आप जाएंगे तो आपको जाति पहले पूछेंगे, फिर गोत्र पूछेंगे। अगर आप जो गोरे गोरे होंगे बहुत सारे तो आपको लगेगा उधर के आप फॉरेनर हो, तो आपको नाम पूछेंगे, समझो आपने रट कर नाम भी गए होंगे तो गोत्र पूछेंगे। और गोत्र ऐसे हमारे हिंदू के होते हैं कि जो हिंदू है उसका उच्चार वही कर सकते हैं, समझो बोलेंगे आपका गोत्र क्या है, कौंडिन्य गोत्र है। अभी किसी को रटके भी गया जो अगर असली नहीं है तो कौंडिन्य बोलने में गलती करेगा वो बराबर पकड़ेंगे उसको बाहर कर देंगे उधर से। तो कोई कहीं बहुत सारे हिंदू लोग भी बहुत गोरे गोरे होते हैं। हाँ, और हमारे देश के भी लोग गोरे गोरे होते हैं, कभी लाल आंखें कभी नीली आंखें होती, हरी आंखें होती हैं। तो उनको पकड़ते हैं, उनको बार बार पूछते हैं, अगर सही तरह से उच्चार किया एकदम बिना डर के और एकदम आराम से किया तो उनको खातरी हो गई कि भाई ये हिंदू है, तो फिर उसको अंदर भेज देते। लेकिन जब वो बाहर आते हैं रथ में बैठने के लिए, उस दिन उनको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो और किसी जाति के लोग हैं, देश के हैं, विदेश के हैं, परदेश के हैं, अमेरिकन हैं, चाइनीज हैं, हांगकांग के हैं, फिलीपींस के हैं, सब प्रकार के लोग उनको गले मिल सकते हैं। देखो आप कितनी दया उनकी। हाँ, आज भी ऐसे कई भी हिंदू के कई मंदिर है भारतवर्ष में, यहाँ पर साल भर में या क्या जिंदगी भर में कभी भी किसी नॉन हिंदू को या परदेशी आदमी को दर्शन नहीं हो सकते भगवान। अगर फोटो भी निकालते नहीं कभी कभी उनका, फोटो निकला तो खाली फोटो देख सकते हैं बस, इतना कड़क नियम है। आपको पता नहीं होगा जगन्नाथ जी भगवान ऐसे अद्भुत भगवान है कि हमारे देश की पंतप्रधान इंदिरा गांधी वहां पर गई थी, उसको उन्होंने भगा दिया, वहां से प्रवेश नहीं दिया। अब बोले क्यों क्यों प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि उसकी शादी पारसी से हुई थी, फिरोज गांधी तो स्वयं पारसी थे, तो देश की पंतप्रधान थी वो, फिर भी जगन्नाथ जी के पुजारी के सामने उसके एक नहीं चली, उसको जाना पड़ा, दर्शन नहीं हुआ। ऐसे विशेष जगन्नाथ जी हमारे। दूसरी बात है कि इनकी स्नान यात्रा होती है उनके जन्मदिन के अवसर पर, जिस दिन उनका आविर्भाव हुआ था पृथ्वी पर उस दिन उनकी स्नान यात्रा होती है, उसके बारे में आज आपको मैं विस्तार रूप में बताऊंगा। सब पोस्टपोन नहीं करूंगा। उसके बाद में उनका विशेषता यह है कि ये द्वारका के ऐश्वर्य संपन्न भगवान है, द्वारकाधीश है ये। हाँ, वृंदावन में कैसे भगवान चप्पल नहीं पहनते हैं, वन की फूलों की माला पहनते हैं, मोर पंख पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, है ना, बांसुरी बजाते हैं, गाय के साथ खेलते हैं, गोबर में खेलते हैं, गोमूत्र में खेलते हैं, दोस्तों के साथ में गुल्ली डंडा खेलते हैं, पानी में कूदते हैं, ऐसे एकदम आराम से रहते हैं, मतलब घर के जैसे रहते हैं। लेकिन द्वारका में वो राजा बन के रहते हैं, द्वारकाधीश। स्वयं इंद्र जो है अपनी सभा भेजता है, सभा मतलब क्या है, जो हॉल है ना बड़ा सुधर्मा हॉल, सुधर्मा हॉल देवताओं का राज्यसभा है, वो राज्यसभा देवताओं के राज्य से पृथ्वी पर आती है और उसमें बैठकर भगवान द्वारकाधीश अपना राज कारभार चलाते हैं। तो वो द्वारकाधीश भगवान जो है वो रुक्मिणी के और 16108 पत्नियों के हाथ से दिव्य व्यंजनों का भोग लेते रहते हैं। वो द्वारकाधीश भगवान जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो जगन्नाथ बन जाते हैं। और उनका भाव क्या है, वो है द्वारका के भगवान, लेकिन वृंदावन के ब्रजवासियों के विरह में है, दुख में है, उनकी याद में परेशान है और उस भाव में रहते हैं। उसको कहते हैं विप्रलंब माधुर्य भाव बोलते हैं, माधुर्य भाव वृंदावन के भाव को बोलते हैं। और माधुर्य के भी कई प्रकार हैं। उसमें जब प्रियतम, किसी प्रियतम का विरह होता है, जो किसी का प्रियतम दूर गया, किसी का प्रदेश चला गया, तो उस विरह में वो व्यक्ति रोती है ना कि भाई उसकी याद आती है उनको। तो जब भगवान छोड़ के गए, वृंदावन से मथुरा गए, द्वारका गए, तो गोपियों को, ब्रजवासियों को बहुत दुख हुआ, सब लोग विरह में गए। ऐसा नहीं खाली गोपियां ही विरह में थी, भगवान भी विरह में थे द्वारका में, उनको भी बहुत याद आ रही थी, मैया की, बाबा की, सखाओं की और सखियों की, सबकी याद में वो रोते थे। तो वो जो भाव है उनका, अपने प्रियजनों से दूर रहकर जो दुख भोगते हैं, वो उसको कहते हैं विप्रलंब माधुर्य भाव। उस भाव में वो जगन्नाथपुरी में रहते और ऐसे अद्भुत रूप में रहते। ये जो रूप है उनका, इसका नाम है महाभाव स्वरूप। ये महाभाव जो है, ये केवल राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों के पास में, और किसी भगवान के अवतार के पास भी नहीं है। इसको महाभाव कहते हैं। कई प्रकार के भाव है, अनंत भाव है, लेकिन उसमें एक महाभाव है, वो केवल भगवान के पास में है। तो ये ऐसे क्यों है? क्योंकि ये महाभाव के स्वरूप में है। इसका वर्णन मैं आगे करूंगा। फिर विप्रलंब माधुर्य भाव में रहते हैं, लेकिन एक ही साथ में 56 भोग भी करते रहते हैं। हमारे मेडिकल साइंस में आपको पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा कि जो लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, बहुत परेशान रहते हैं, वो लोग बहुत खाते हैं, मालूम है आपको? क्योंकि जब मन परेशान रहता है तो किसी किसी ने वस्तु में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो फिर वो खाने लगता है बैठ के। जो आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत ज्यादा खाता है। इसलिए हमारे डॉक्टर सावे जो हैं, इनके पास जो साइकेट्रिक आते हैं ना मरीज, डिप्रेशन वाले मरीज, बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं करते, वो बहुत दुखी रहते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी सिंगदाना खा रहे हैं, कभी बड़ी खा रहे हैं, कभी वड़ा खा रहे हैं, कभी हलवा खा रहे हैं, कभी केला खा रहे हैं, खाते रहते हैं, क्योंकि उनको माइंड उनका बहुत रेस्टलेस रहता है, बहुत अस्थिर रहता है उनका माइंड। तो वो माइंड को किसी न किसी काम में लगाने के लिए वो क्या है, सबसे आसान काम क्या है, मैंने बोला ना, खाने का काम है क्या? ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि सबसे आसान काम है वो खाने का। इसलिए वो दुखी व्यक्ति जो है वो हमेशा खाते रहता है कुछ ना कुछ। तो हमारे भगवान जो है, द्वारका के भगवान है, वृंदावन की याद में रो रहे हैं, उस रोने के भाव में खाते रहते हैं दिन भर, उनका कुछ ना कुछ भोग चलते रहता है। इसलिए उनका किचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी में भगवान ने एकादशी को उल्टा को टंगा है, उनको खुद को खाना है, इसलिए वो एकादशी को बोलते तुम यहाँ पर मत आओ, और दुनिया में कहीं जाना वहां जाओ, अपना अपना नियम चलाओ, जगन्नाथपुरी में मत आओ। ऐसा उनका भाव है। 56 भोग मतलब एक साथ में 56 आइटम नहीं खाते हैं, दिन भर में 56 आइटम बनते हैं और लगातार चलते रहते हैं। हमको पहले ऐसा लग रहा था कि हर एक लंच में या हर एक डिनर में या हर एक ब्रेकफास्ट में 56 खाते होंगे, ऐसा नहीं है। दिन भर में 56 प्रकार के आइटम बनते हैं उनके, और कभी 4 गए, कभी 15 गए, कभी 20 गए, कभी 25 गए, कभी 10 गए, कभी 4 गए, 1 गया, ऐसा चलते रहता है उनका। लेकिन कोई टाइम नहीं होता उसका, ऐसा नहीं कि भाई 7:05 में 4 जाएंगे, फिर 7:55 में 3 जाएंगे, और फिर 8:45 पर और 10 जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बनेगा जाते रहेगा, मतलब जैसे बनते जाएगा वैसे जाते रहेगा। तो बार बार मंदिर बीच में बंद होता है, और जब जाता है वो, तो सूरज का किरण उस पर गिरना नहीं चाहिए, सब ढका हुआ रास्ता है, पूरा किचन से लेके भगवान के मंदिर तक सब ढका हुआ है, कि साइड से भी नहीं आना चाहिए कीर्तन, क्योंकि शाम को भी जाएगा ना भोग 5 बजे, जब सूरज अस्त होता रहेगा तो ऐसा किरण आएगा ना साइड में से, तो वो भी नहीं गिरना चाहिए, पूरा बंद रहता है, और किसी भी जानवर, पंछी या किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर नहीं गिरनी चाहिए। इसे ढक के लेके आते हैं, और पूरा वाजंत्री होता है ना, पूरा बैंड बाजा बजा बजाते आगे चलते हैं, सब दरवाजे बंद कर देते हैं, सभी लोगों का आवागमन बंद कर देते हैं, और केवल वो रास्ता खुला रहता है जहां से किचन से मंदिर की ओर जाता है रास्ता, वो सब सिक्योरिटी गार्ड रास्ता बंद कर लेते हैं, और बीच में से म्यूजिक बजाते बजाते नाचते नाचते उनका भोग मंदिर पहुंचता है, उनको भोग लगता है, और रात तक उनका शयन करने तक 56 भोग पूरे कर देते वो। और ऐसा हमारे प्लेट में कैसे होता है, हमारे मंदिर में भी हमारा भोग लगता है ना नीचे जगन्नाथ जी को, एक प्लेट में 4 वाटी रहती है, और एक आइटम एक वाटी में रहता है, सब्जी एक वाटी, हलवा एक वाटी, चपाती 4, एक सलाद, एक मीठा, एक पकौड़े की वाटी, ऐसे इतना रहता है। वहां पर सारे भोग व्यंजन जो है वो बड़े बड़े ऐसे मट्टी के मटके में जाते हैं, मैंने बताया ना राहुल, चावल का आपको तो एग्जांपल दिया मैंने, लेकिन केवल चावल ऐसे बड़ी मात्रा में नहीं पहुंचता है वहां पर, सब्जी भी ऐसी रहती है, बड़े 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 मटके के अंदर आती है, एक बार चार मटके दाल, 50 मटके चावल, ऐसे ज्यादा है सब कुछ, सब मात्रा जो है बड़े बड़े पैमाने पे, एवरीथिंग इज वेरी बिग एंड लार्ज। उसके बाद में कई विशेषताएं हैं जगन्नाथ जी की, अद्भुत चीजें हैं उसमें, और एक विशेष चीज है, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी कृष्ण भगवान के या विष्णु भगवान के या नरसिंह भगवान के जितने मंदिर हैं, उस सबको कैसे पूजा की जाती है, उसका एक ही शास्त्र है, वो वेद। वेद में सबका वर्णन दिया गया, कैसे कैसे पूजा करना है, नरसिंह भगवान की मूर्ति को स्थापन कैसे करना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, और कृष्ण भगवान की कैसे करनी है, विष्णु की कैसे करनी है, सीताराम की कैसे करनी है, सब भगवान की पूजा की विधि बताई गई है। कोई विधि स्कंद पुराण में है, कोई पद्म पुराण में है, कोई किसमें है, कोई वेद उपनिषद में है, लेकिन है वेद में ही, सब मिलकर जो वेद बने हुए हैं उसी के अंदर सबका पूजा का विधि सब बताया गया है। लेकिन जगन्नाथ जी को जो पूजा विधि है वो वेद के आधारित नहीं है, उनका एक अलग स्क्रिप्चर है पूरा, जो उसको बोलते हैं कड़चा, कड़चा यानी ऐसे लंबे लंबे पेड़ के पत्ते पर लिखा हुआ है सब, और वो सारे पेड़ के पत्ते जो है वो ऐसे इकट्ठा करके, अगर मैं मेरा हाथ ऐसा फैलाऊंगा ना तो कितना जगह होगा उसके अंदर, उतने ऐसे जगह में गोल बांध के रखा है उसको, खड़ा करके रखा है उसको, कुमकुम हल्दी सब अर्पण करके उसकी पूजा की जाती है। और हजारों लाखों जगन्नाथ जी के पुजारी हैं, दाइत हैं, शबर है, कई जाति के लोग हैं, किसी को पढ़ने को नहीं मिलता है। जगन्नाथ मंदिर का जो चीफ पुजारी है, टर्न बाय टर्न होता है ना, वो आदमी अगर मर गया तो फिर दूसरा चीफ पुजारी बनता है, फिर वो जाता है तो उसका आगे का आदमी सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ पुजारी बनता है। केवल चीफ पुजारी बनने के बाद ही उसको खोल के वो पढ़ सकता है, और वो खोलेगा और पढ़ेगा और आके बताएगा ऐसा ऐसा करना है, फिर लोग उसको करेंगे। कोई भी जाके वहां पर छुप छुप के जाके पढ़ेगा नहीं, या कोई अंधेरे में या कोई बीमार पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं। जो केवल एक व्यक्ति है एक समय पे, आज के तारीख में एक ही व्यक्ति होगा, वो चीफ पुजारी, सबसे बुढ़ा, सबसे सीनियर, सबसे एडवांस डिवोटी होगा वो, उसी को केवल अंदर प्रवेश मिलेगा उस कमरे के अंदर, अंदर जाकर लेके कर्चा निकालेगा वो, उस समय का जो कर्चा है उस उत्सव के अनुसार उसको पढ़ेगा और आके समझाएगा, और वो जो जो बताता है उसी से ही मालूम पड़ता है कि क्या क्या लिखा है उसके अंदर। बस जो उसने बताया है उतना ही हमको मालूम पड़ता है। शायद उसने सोच लिया होगा कि मैं 100 लाइन पढ़ के आया हूँ, 2 ही लाइन बताऊंगा इनको, तो वही इतना ही मालूम पड़ेगा। 98 लाइन्स जो पढ़ा है वो उसको ही मालूम है, वही करेगा अपनी विधि में करते रहेगा, किसी को नहीं बताएगा वो। ऐसी विशेषता है। और हो सकता है मैं अगले प्रवचन में स्लाइड लेके आऊंगा, उसका फोटो भी दिखाऊंगा अलग अलग प्रकार के, कैसे कैसे होता है वो, बहुत सुंदर है एकदम। और वो कहते हैं कि लाखों साल पुराना है वो कड़चा, पेड़ के पत्ते हैं लेकिन फिर भी खराब नहीं होते, ब्राउन रंग के हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है मोर पंख से, वो भी उड़िया भाषा में लिखा है, और केवल वही समझ सकता है चीफ पुजारी। तो जो चीफ पुजारी बूढ़ा होता है उसका समय होता है, तो उसके पहले वो दूसरे पुजारी को जो चीफ पुजारी बनने वाला है उसको समझाता है, ये चावी है, ये कमरा है, इसके अंदर रखा है, उसकी पूजा ऐसे ऐसे करनी है, और उसको कैसे खोल के पढ़ना है वो भी सिखाता है उसको। फिर अगला पुजारी जो है उसके जीवन के अंत तक उसको चलाते रहता है। इतना दुर्लभ है वो, इतना रेयर है वो चीज। जगन्नाथपुरी के पुजारी कुल में जन्म मिलने के बाद भी अगर आपके कुल में चीफ पुजारी होने का भाग्य नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा, चाहे लाइफ लॉन्ग मालूम नहीं पड़ेगा उसके अंदर क्या लिखा है, लेकिन करोड़ों साल से उसकी सेवा चल रही है उसी के अनुसार, और उसको संभाल के पानी में, धूप में, तूफान में, आंधी में उसको संभाल के रखा हुआ है उस कमरे को और उसके अंदर। तो आज हम आपको आज की कथा में स्नान यात्रा के बारे में बताएंगे, क्योंकि स्नान यात्रा सबसे पहले आने वाली है, तो आपको पूरा उसका समझ में आ जाए कि स्नान यात्रा क्या होती है, और जब आएगी स्नान यात्रा तो तिथि उसकी, तो उसको आपको पूरा लाभ मिलना चाहिए, इसलिए मैं उसकी कथा पहले आपको बताऊंगा। स्नान यात्रा ज्येष्ठ महीने की शुद्ध पूर्णिमा को होती है, हमारे महाराष्ट्र में उस दिन वट पूर्णिमा होती है। हाँ, सब औरत जो शादीशुदा है, सौभाग्यवती है, वो नववारी साड़ी पहनकर नैवेद्य का पात्र लेकर वट वृक्ष की पूजा करते हैं। वट वृक्ष जो है वो शिव जी का स्वरूप माना गया है, तो उस दिन सभी स्त्रियां जो है अपने पति के आयुष्य के लिए व्रत करते हैं और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं, उसी दिन स्नान यात्रा होती है। और उस दिन स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि उसी दिन जगन्नाथ जी सत्ययुग में, मतलब आज से लाखों साल पहले की बात है, इसके पहले द्वापर युग था, उसके पहले त्रेता युग था, उसके पहले सत्ययुग था, और किसी सत्ययुग में अभी नहीं, अनेकों सत्ययुगों के पहले सत्ययुग में शुरुआत में इनका निर्माण हुआ है जगन्नाथ जी का। तो उस समय तिथि थी ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा। तो इस समय कैसे होता है, जब वो प्रकट हुए थे जगन्नाथ भगवान तो राजा इंद्रदुम्न ने उनको प्रकट किया था। तो प्रकट होने के पश्चात हमारे से हमारे विग्रह बात नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो राजा इंद्रदुम्न उनके शुद्ध भक्त थे, उनके द्वारा ही प्रकट किए गए थे उनको। तो उन्होंने उनको बात करके समझाया, बताया कि उनकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर जो है ऐसे ऐसे बनाओ। फिर ये मंदिर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य दिशा में एक कुआं खोदो, उस कुएं के अंदर जो पानी आएगा उसके अंदर चंदन की खुशबू होगी और एकदम शुद्ध जो है अमृत जैसा स्वाद वाला वो जल होगा, जल होगा, उसी से मेरा आपको अभिषेक करना है। तो मंदिर के बाहर जो चार दरवाजे हैं, एक सिंह द्वार है, अश्व द्वार है, गजर द्वार है और एक लायन यानी कि एक शेर का द्वार है, एक सिंह का द्वार है, एक गज द्वार है, एक अश्व द्वार है। ये चार दिशा में चार द्वार है और ईशान्य दिशा में उन्होंने कुआं खोदा हुआ है और ईशान्य दिशा के बाहर ही वहां पर वो भगवान को स्नान वेदी पे लेके आते हैं। स्नान वेदी का मतलब जिस चीज पर रख के भगवान को स्नान कराते हैं उसको स्नान वेदी कहते हैं। और उनके भक्त जो हैं वो झुला झुला कर उनको लेके आते हैं दोरे से बांधकर। और ऐसे जैसे नशे में आदमी चलता कैसे है, ऐसे झुमझुम के चलते हैं ना, झुआ झुमझुम के, वैसे झुमझुम के वो बाहर आते हैं। फिर उनको कई सैकड़ों लोगों को उठाना पड़ता है, इतनी भयंकर ऊंची बड़ी मूर्ति होती है उनकी, और स्नान विधि पर उनको विराजमान करते हैं। फिर वो सफेद रंग के कॉटन के लिनन के वस्त्र पहनते हैं उस दिन और सुगंधित फूलों की माला धारण करते हैं और फिर 108 सोने के कलश में उस कुएं का पानी लाया जाता है और फिर जो विशेष पुजारी हैं उनके द्वारा उनको स्नान किया जाता है। दिन भर स्नान चलते रहता है उनका, बीच बीच में भोजन भी करते रहते हैं। हाँ, ये मत समझना कि वो खाना भूल जाते हैं। कोई भी उत्सव करो, ढोल यात्रा करो या उड़न षष्ठी करो या रथ यात्रा करो या तान यात्रा करो, कुछ भी करो, भोजन खिलाने को भूलना नहीं। बस सुबह लेकर सुबह से सूर्य उदय के समय उनको निकालते हैं बाहर और सूर्यास्त तक उनको डालते रहते हैं पानी उनके अंदर। और सूर्यास्त के अंदर जब भी उनके ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है एंड में, फिर सूर्यास्त होता है, फिर उनके सामने ही चंद्र का उदय होता है ना, पश्चिम दिशा की ओर उनका मुख है और पश्चिम दिशा की ओर सूर्यास्त होता है और चंद्र उदय होता है। तो चंद्रमा की किरण उन पर गिरती है तब वो उत्सव समाप्त होता है। लेकिन दिन भर ठंडे पानी, ऐसे कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो साल भर के सभी दिनों के अंदर सबसे गर्म दिन रहता है। तो अब नोट किया गया उसको, ज्येष्ठ पूर्णिमा सबसे हॉटेस्ट डे माना गया है शास्त्र के अनुसार। इसलिए उस दिन भगवान प्रकट होते हैं, उसी दिन उनका स्नान यात्रा उदयन कराते, ठंडे पानी से कराते। लेकिन इतना भी गर्मी रहेगा और दिन भर आदमी पानी से भिजा रहेगा तो शाम को वो बीमार पड़ेगा। खुली हवा में अगर उसके अंदर खुली हवा आएगी उसके शरीर पर भिगे हुए तो बीमार पड़ जाएगा वो। तो भगवान ये ऐसे एक अनोखे भगवान है। इसकी और भी एक लास्ट अद्भुतता ही वो ये है कि वो एक ही भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार आता है और वो कहते हैं राजा इंद्रदुम्न को कि अगले 15 दिन मैं सिक लीव लेने वाला हूँ मैं काम पे नहीं आऊंगा। उनका काम क्या है, दर्शन देना, ये उनका ड्यूटी है। मतलब मैं दर्शन देने को नहीं आऊंगा और मुझे ये जड़ी बूटियां देना पड़ेगा आपको, वो जो बाकी दिन खाता हूँ 56 भोग उसका मैं भोग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार गिरने वाला हूँ। उसके बाद में मैं वो जो कोई फल है, विशेष फल है, जंगल में ही मिलते हैं, उनका भी लिस्ट दिया गया है उस कड़चा के अंदर, वो सब उनको देते हैं और जड़ी बूटी भी देते हैं। और जगन्नाथ जी का शरीर जले हुए लकड़ी की तरह गर्म हो जाता है और 15 दिन के बाद में फिर वो ठीक हो जाते हैं। उसको कहते हैं अनवसर। तो स्नान यात्रा जो है आज के साल में 3 तारीख को है, सॉरी 15 जून को है, आई एम सॉरी 15 जून को है, मतलब आने वाले 15 जून को बुधवार के दिन स्नान यात्रा होगी राधा गिरधारी मंदिर में। 11 बजे जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा, सब लोग आना उस दिन। हाँ, सब लोग के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है, जो लोग सेकंड शिफ्ट में रहेंगे वो भाग्यवान रहेंगे क्योंकि 11 से 1 और 1 बजे लंच के बाद 2 बजे आप ड्यूटी पर आ सकते हो। जो फर्स्ट शिफ्ट में है वो कम से कम लंच में वहाँ पहुँच सकते हो महाप्रसाद लेने के लिए, लेकिन जाना जरूर आपको। हाँ, तो ये 15 जून को है, 15 जून को चंद्र ग्रहण भी है तो उसके अनुसार केवल दिन में मंदिर खुला रहेगा, फिर बाद में शाम को बंद हो जाएगा क्योंकि रात को चंद्र ग्रहण है और ग्रहण के समय मंदिर खुला नहीं रहता है। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान बीमार पड़ गया था। हमारे एक डॉक्टर अलवा है, डॉक्टर शेट्टी है ना हमारे, उनके ही बिल्डिंग में रहते हैं, बड़े भगवान के भक्त है, बहुत ऐसे भक्त हैं कि हर हफ्ते के हर शनिवार रविवार को वो कहीं ना कहीं पवित्र स्थान पर रहते हैं। आज शनिवार को अगर बद्रीनाथ में रहेंगे, अगले शनिवार को श्रीरंगम में रहेंगे, अगले शनिवार को द्वारका में रहेंगे, उसके अगले शनिवार को पंडरपुर में रहेंगे, ऐसा उनका साल भर का शेड्यूल है, सब टिकट बुक रहता है उनका, कौन से वीकेंड में कहाँ जाना है उनका सब फिक्स रहता है, इतने वो भगवान के भक्त हैं। तो वो एक दिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के समय जगन्नाथपुरी गई, तब हमारे गुरु जी भी वहां पर थे, हम लोग भी सब यात्रा में थे, सब लोग हम वहीं थे। तो उनका एक खासियत है, वो किसी भी मंदिर में जाएंगे वर्ल्ड के किधर भी, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, या द्वारका जाएंगे, या श्रीरंगम जाएंगे, उनकी पुजारियों से बहुत जल्दी मैत्री हो जाती है, उनके पास कोई कला है, पुजारी लोग उनके बहुत जल्दी उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो ये भी पहुंच गए पुजारी घर में, पुजारी घर में पहुंच गए, पुजारी घर बोले अरे आप डॉक्टर हो क्या? हाँ डॉक्टर हो। अरे हमारे कालिया को जरा बुखार आया। कालिया मतलब कौन? हमारे जगन्नाथ जी, वहां पर उनको सब लोग कालिया बोलते हैं प्रेम से, क्योंकि रंग काला है ना उनका, और कोई उनको भगवान नहीं मानते, फ्रेंड मानते हैं, फ्रेंड। तो फ्रेंड को बोलते ना कल्लू, कलुआ, अलग अलग नाम से पुकारते ना, नाम कुछ अच्छा रहेगा उसका, लेकिन उसको कभी शॉर्ट फॉर्म उल्टा सुलटा करके बुलाएंगे, उसको फ्रेंडशिप होते ना, अरे धोंडिया क्या कर दो नाम है धोंडो पंत करवे, लेकिन उसको क्या बोलेंगे धोंडिया क्या करते रहे तू, मैत्री का प्रतीक है वो। तो वैसे ही वो बोलते अरे हमारे कालिया को बुखार आया जा देखो, तो डॉक्टर अलवा को लोग कि अरे क्या ऐसे ही बोलते होंगे, क्या मालूम ऐसे प्रथा है तो बोलते होंगे। तो उन्होंने ऐसा चेहरे पे दिखाया कि ऐसा कुछ विश्वास दिखाया नहीं, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि डॉक्टर अलवा को विश्वास नहीं इस बात पर। डॉक्टर साहब आओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, जरा हाथ लगा के देखो आप लोग क्या करते हो, बुखार आया तो हाथ लगा देते, हाथ लगा के देखते ना कितना बुखार है, जरा देखा ना को देखो। तो ऐसे गए रुबाब में, उन्होंने क्या ठंडा रहेगा ऐसे ही कुछ बोलते रहेंगे, जैसे हाथ लगा उनको चटका लग गया उनको हाथ, जैसे ही उनको ये अनुभव आया अरे ये जो बोल रहे हैं वो सच है, जगन्नाथ जी को इतना तेज बुखार आया कि हाथ को चटका लग गया। तो वहां से जो भाग के निकले, कम से कम 4 किलोमीटर भाग के गए समुद्र किनारे, और वहां पर हमारे गुरु जी का रूम था, गुरु जी के रूम में गए, रात को दरवाजा खटखटाया, 2 बजे रात को, बोले महाराज महाराज मुझे आपको विशेष बात बतानी है। बोला क्या हो गया? बोला अभी अभी मैं जगन्नाथ जी के अंदर गर्भगृह से भागते आ रहा हूं, ये मेरा हाथ देखो इसको चटका लगा है जगन्नाथ जी के शरीर का। इतने मतलब एक्साइट हो गए थे वो ये सब अनुभव करके, ये सब सच है, ऐसा नहीं कि बना बनाई कहानी है, बच्चों को मनोरंजन करने के लिए बनाई गई कहानी। फिर वो रोज आते रहे अंदर, रोज टच करके देखते रहे, रोज चटका लग रहा है उनको, 15 दिन वही रहे। 15वें दिन देखते थे ना रोज उनको, जड़ी बूटी जा रही है, कुछ काढ़ा जा रहा है, कुछ कषाय जा रहा है, कुछ दवाई जा रही है, कुछ आम खाना नहीं जा रहा है, बाकी कुछ फल जा रहे हैं। जैसे आदमी होता है ना बीमार, उसको हम हल्का हल्का मूंग की खिचड़ी, चावल का पानी ऐसा खिलाते ना हम लोग, वैसे ही डाइट का दवाई का डाइट जा रहा है। तो जब ही 15 दिन खत्म होने को आए, तो पुजारी ने बोला डॉक्टर साहब अभी वो ठीक गए, ठीक हो गए, जरा चेक कर लो बुखार उतर गए नहीं, कहीं फिर हाथ लगाए ठंडा शरीर। नेक्स्ट डे नेत्रोत्सव, उसका अगले दिन रथ यात्रा। ऐसे अनोखे भगवान है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये सब भगवान के जो कहानियां हैं, इन्होंने गोवर्धन को उठाया था, इन्होंने लाखों करोड़ों रूप धारण करके रास में नृत्य किया था, ये सब ऐसे बच्चे लोगों को फैलाने के लिए, सब जो लोग मूर्ख होते हैं जिनको अक्कल नहीं होती है उनको समझाने के लिए सब बनाया गया है ऐसे मनोरंजन के लिए। लेकिन जिनको श्रद्धा है उनके लिए सत्य अनुभव होता है। अगर कोई अश्रद्धालु पहुंचेगा और उसको हाथ लगाएगा तो ठंडा लगेगा उसको, क्योंकि जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको भगवान को चमत्कार दिखाने की जरूरत क्या है, जिसकी श्रद्धा है उसको भगवान सब चमत्कार दिखा सकते हैं। जो भी कहानियां सुनते हैं वो सत्य में आप देख, आपकी आंखों से आपको दृष्टि में नजर आएगा वो, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो श्रद्धा का मार्ग है। वो कोई अश्रद्धालु लोगों का, आर्ग्यूमेंट करने वालों का, बुद्धिजीवी लोग, साइंटिस्ट लोगों का काम नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी होगा, कम से कम पढ़ा होगा, श्रद्धा होगी, भगवान को दर्शन देंगे और उसको अनुभव कराएंगे। इसलिए हम लोग सबको कहते हैं श्रद्धा रखो भगवान पर, श्रद्धा से उनका नाम का जप करो, फिर उस नाम के अंदर उनका दर्शन होगा आपको, आपको अनुभूति होगी उनके बारे में। तो ऐसा है कि स्नान यात्रा में भगवान बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन एक बार एक साल में एक गणपति भट्ट नाम का एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। आप जानते हैं ना महाराष्ट्र में अधिकतर लोग गणपति की पूजा करते हैं ना, हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं आप कौन से भगवान का मानते हैं, तो अधिकतर लोग बोलेंगे गणपति को मानते हैं, 10% लोग बोलेंगे हम शिवजी को मानते हैं, 10% बोलेंगे कि हम देवी को मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा करते हैं। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये महाराष्ट्र का पक्का गणेश भक्त है, गणपति भट्ट नाम है उसका। वो पहुंचता है जगन्नाथपुरी, क्योंकि उसको सुनाई पड़ता है कि जगन्नाथ में वो परम भगवान जो है ना, हमारे भगवान, वो जगन्नाथपुरी में उनके आज अभिषेक होने वाला है। तो पहुंच गए उधर वो, लेकिन जाके देखा तो अरे ये तो अलग ही टाइप के हैं, कुछ हाथ ऐसे आगे खड़े हैं, हाथ में पंजा नहीं है, उंगली नहीं, कुछ नहीं, पैर तो है ही नहीं, और बीच में कोई एक मूर्ति है, उसको हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी खुली हुई आंखें, ऐसा बड़ा बड़ा खुला मुंह है, ये हमारे भगवान नहीं है, ऐसा तो हाथी का सर तो है ही नहीं इसको, तो कैसे भगवान हो सकता है, क्योंकि उसका भगवान तो हाथी वाला है ना, हाथी मुख वाला है ना। तो वो सोच रहे हैं कि ये तो क्या है, ये तो कोई गड़बड़ काम लाया, हम लोग चले जाएंगे, निकल जाता है। तो जगन्नाथ जी को जरा, जगन्नाथ स्वयं जो है वो जानते हैं ना सबके मन में क्या चल रही है, तो समझ गए इसके मन में ऐसा ऐसा भाव है। तो जगन्नाथ जी ने एक ब्राह्मण के बेटे का स्वरूप लिया, तो ये जा रहा है निकल के, उसके पीछे पीछे बालक भाग रहा है, बोले महाराज जी, ब्राह्मण जी, रोहित जी कहाँ जा रहे हो? अरे कोई बात नहीं, इधर कुछ भगवान है नहीं सब, ये इनको तो हाथी का सर तो है नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो हाथी का सर क्या, किसका भी सर लगा सकते, सिंह का बोलो, सिंह का भी लगा लिया एक बार उन्होंने जानते है ना, कभी लगाया, बोलो कभी लगाया सिंह का मुख? हाँ अरे बोलो तो सही, नरसिंह भगवान के रूप में आए तो वो सिंह का शेर लगाया था ना उन्होंने, तो ये हाथी का मुख भी लगाएंगे, आप शाम तक रुको, बोला। तो बालक की मीठी मीठी बातों से उनको लगा कोई बात नहीं, रुकने में क्या तकलीफ है, अगर नहीं भी है तो कोई वादा नहीं है, और हो तो देखेंगे क्या होता है। तो लौट के आया वो, तो जगन्नाथ जी ने चमत्कार किया, उसके आंखों के सामने जगन्नाथ और बलदेव काला और सफेद हाथी बन गए। तो उसको कहते हैं हाथी वेश, गज वेश। और आज भी उस लीला के और चमत्कार के याद में हर स्थान यात्रा के शाम को भगवान जी, यहाँ मंदिर में भी जाएंगे आप तो आपको जगन्नाथ भगवान काले हाथी और काले सूंड के सामने नजर आएंगे, और बलदेव जी जो है सफेद हाथी और सफेद सूंड के स्वरूप में नजर आएंगे। उसको कहते हैं हाथी वेश, उसका दर्शन भी आप जरूर करना। हमारा ऐसा भाग्य था कि पिछले संडे को हमारे बालघर के सेंटर में जगन्नाथ जी का स्थान यात्रा हुआ, तिथि के पहले हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर जय कृष्ण बहु बैठे हैं, इनके देश में हुआ वो सब, बहुत सुंदर हाथी वेश का दर्शन हुआ, बहुत ही सुंदर। तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा 15 जून को, बिना भूले आप यहाँ पर सुबह अभिषेक करिए, फिर काम पे आइए, और शाम को जाते वक्त स्नान यात्रा का गजवेश दर्शन करके जाइए। अभी अनवसर का समय जो है, जो 15 दिन भगवान का दर्शन बंद रहता है, उसका रहस्य हमारे जो प्रभुपाद जी है उसके गुरु समझाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनको नींद आती है वो उठ के नाच करो ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके, फिर जगन्नाथ की कहानी सुनो। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बताते हैं कि अनवसर का काल मतलब वो काल है जहाँ पर लक्ष्मी देवी के साथ में भगवान एकांत में समय बिताते हैं। उसको कहते हैं स्वकीय रस, स्वकीय मतलब बाकी साल भर में वो परकीय यानी कि विप्रलंब माधुर्य रस में रहते हैं, लेकिन उस 15 दिन के अंदर वो स्वकीय रस में रहते हैं, लक्ष्मी देवी के साथ में एकांत में वन में रहते हैं। उनको आम जगह पर जो खड़े रहते हैं ना वहां पर उनको रखते नहीं है, उनको अलग जगह लेके जाते हैं, और वो एकांत को बगीचे का स्वरूप दिया गया है, उसमें लक्ष्मी देवी के साथ में एकांत में वो निवास करते हैं, फिर उसके बाद में रथ यात्रा करते हैं। तब ये जगन्नाथ जी जो है वो विदेश कैसे पहुंचे, इनकी सुंदर कहानी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। प्रभुपाद जी आप जानते हैं ना, उन उम्र के 70 साल की उम्र में यहाँ से बोट से अमेरिका गए, एक साल तक बहुत कष्ट सहन किया, कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उनका सेटलमेंट हो गया, शिष्य बने उनके बहुत सारे, मंदिर बने, बहुत जगह उनके प्रचार हुआ, इंग्लैंड में लोग मंदिर बने, ऐसे बहुत सारा समय गया। तो प्रभुपाद जी उस समय सैन फ्रांसिस्को में गए थे, 2 साल के बाद की बात है, 1965 में अमेरिका पहुंचे, और 2 साल में कई मंदिर बने उनके, और वो अमेरिका के बहुत ही पश्चिम किनारे में एक शहर है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर वो बैठे थे, और उनके श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, पति पत्नी, उनकी बेटी सरस्वती, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर भक्त लोग थे। तो इसमें से जो मालती देवी थी वो एक दिन एक दुकान में गई, उसका नाम था कॉस्ट प्लस, उस दुकान का मॉल का नाम था कॉस्ट प्लस। उस दुकान में भारत से इम्पोर्टेड माल आया था, मतलब भारत से इम्पोर्ट किया हुआ माल आया था, और बड़े बड़े 3 ऐसे गनी बैग्स, बड़े बड़े थैले थे ऐसी, सब माल भर के आया था। तो बहुत उनको ऐसा कुतूहल लगा ना, बहुत क्या है उसके अंदर, तो एक खोल के देखा उन्होंने ऐसे ही, तो एक खिलौना निकला, खिलौना। तो तो खिलौना उन्होंने जेब में डाल दिया और जेब में डाल के घर पे आया और प्रभुपाद को दिखाया कि देखो मैंने स्टोर से आज ये खिलौना लेके आया। तो वो खिलौनों के देखते ही प्रभुपाद जी ने दंडवत प्रणाम किया। अभी आप सोच सकते हैं कि आपके गुरु के पास कोई खिलौना लेके गए, गुरु जी ने दंडवत प्रणाम किया, ऐसा तो आपको आश्चर्य होना कि क्या है खिलौना है क्या ये। तो वो खिलौना प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जगन्नाथ जी है, ये खिलौना नहीं है। काले रंग के हाथ आगे, बड़ी बड़ी मुस्कान, लाल आंखें, लाल मुस्कान, हाँ पैर नहीं, हाथ आगे पंजा नहीं, उंगली नहीं, ऐसे उनका स्वरूप था, लेकिन छोटे से थे बहुत। तो प्रभुपाद ने दंडवत किया और पूछा इनके साथ और भी थे क्या कोई? तो बोले और दो थैलियां थी, हो सकता है उसमें कोई और दो होंगे शायद। बोला जाओ जल्दी कॉस्ट प्लस में जाओ दुकान में और वो दो भी लेके आओ। तो वापस भाग भाग के गई कॉस्ट प्लस मॉल में और उन्होंने फिर दूसरे थैली में से एक और अगली थैली में से एक, एक सफेद रंग का खिलौना था और एक सुनहरे रंग का खिलौना था, दो ही ले दिए, खरीद के लेके आए, प्रभुपाद को दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने जो काले रंग का खिलौना था उसको राइट में रखा, बीच में गोल्डन रंग का खिलौना है उसको रखा, उसके बाजू में व्हाइट रंग का खिलौना रखा और बताया कि ये जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव महाराज है, ये भारत से आए। तो बोले कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपने आप ही सैन फ्रांसिस्को में प्रकट हो गए हैं, ये बड़े भाग्य की बात है और बड़ा शुभ लक्षण है, ये हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस है कि हमारे जगन्नाथ भगवान जो है स्वयं ही बिना प्लानिंग के अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं। और इसके पीछे थोड़ी इतिहास ऐसा है, इतिहास इसका कि जब प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए तो उनको बहुत चिंता थी कैसे होगा अमेरिका में, कैसे प्रचार करूंगा, मेरा कोई फ्रेंड नहीं वहां पर, कोई सपोर्ट नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई मेरे पास आश्रम नहीं है, कोई मित्र नहीं है, गुरु बंधु नहीं है, क्या होगा वहां पर, ऐसे उनका चिंता थी। तो वो सब मंदिर में गए, बड़े बड़े मंदिर में प्रार्थना किया उन्होंने, जैसे कि मायापुर गए, अद्वैत आचार्य के मंदिर में गए वहां प्रार्थना किया, योगपीठ में गए मायापुर में वहां प्रार्थना किया, वृंदावन गए वहां प्रार्थना किया और लास्ट में सबसे जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े रहकर उन्होंने बहुत प्रार्थना किया और उसके बाद सीधे बॉम्बे आए, बॉम्बे सीधे अमेरिका चले गए। तो उनका लास्ट दर्शन, लास्ट प्रार्थना जो उन्होंने किया था वो जगन्नाथ भगवान को किया था। और तब तक दो साल में उनके आंदोलन में सेंटर्स खड़े हो गए, सेंटर्स बहुत खड़े हो गए, लेकिन कोई विग्रह अब तक नहीं आया था, कोई मूर्ति अब तक स्थापन नहीं की गई थी। तो जब ये जगन्नाथ जी के खिलौने मिले तो उनको लगा कि जगन्नाथ जी की इच्छा है कि पहले उनको स्थापन किया जाए। तो उन्होंने पूछा कि भक्तों को पूछा, तुम में से कोई लकड़ी का काम करने वाला कोई सिखाएगा, कोई लकड़ी का मूर्ति बनाना ऐसा कोई सिखाएगा, मूर्तिकार कोई है क्या? तो श्याम सुंदर जी ने कहा कि, श्याम प्रभु ने कहा कि मैंने थोड़ा थोड़ा बचपन में खेल खेल में काम किया था लकड़ी के ऊपर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि तीन मूर्ति को सामने रखो अपने और ये इतनी इतनी मूर्तियाँ हैं, छोटे छोटे खिलौने हैं, 3.5 फीट के आपको बनाने पड़ेंगे, इतने ही इसी आकार के, इसी शेप के, इसी प्रपोर्शन के आपको बनाने पड़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कोई बात। तो प्रभुपाद जी रोज उसको देखते रहे, बनाते रहे लकड़ियाँ और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ इस बात का, मुझे पढ़ते बहुत आश्चर्य हो गया, क्योंकि जगन्नाथ जी की जब पहला सबसे बड़ा विग्रह पहली बार बना विश्व में, जब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए तो भगवान विष्णु की ओर से समुद्र में दिव्य लकड़ी उत्पन्न हुई थी, जिसके वजह से अंधेरे में रात को सारा प्रकाश फैल गया था, जैसे मानो दिन हो, ऐसे दिव्य प्रकाशमान लकड़ी जो है जिसके अंदर चक्र शंख पद्म गदा का चिन्ह था, ऐसी प्रकाशमान लकड़ी समुद्र में अपने आप पैदा हुई थी। और भगवान ने, जगन्नाथ ने स्वप्न में उनको बताया था कि मैं आऊंगा, राजा इंद्र ने उनको स्वप्न दिया था उन्होंने और कहा था कि कल तुम जाओ सेना लेकर समुद्र किनारे जाओ, मैं वहां पर दिव्य दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और स्वप्न को सच करते हुए उनके आंखों के सामने वो दिव्य प्रकाश नजर आया और कई हाथियों को उस लकड़ी को खींचने में तकलीफ हुई, फिर आखिर जाकर कैसे भी करके उस लकड़ी को बाहर लेके आए और उसी के 3 विग्रह बने, मतलब लकड़ी किसी ने तोड़ के नहीं बनाई थी, वो अपने आप भगवान की दया से प्रकट हो गई थी। तो जब इनको प्रभुपाद ने बनाया, बताया कि आपको मूर्ति बनाना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो वो लकड़ी ढूंढ रहे थे तो वो भी समुद्र किनारे गए, वहां पर है ना, होता ना पोर्ट, अपना कैसे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, मतलब बंदर बोलते हैं, डॉकयार्ड होता, डॉकयार्ड में वहां पर बाहर से माल आता है, इम्पोर्टेड माल बोर्ड से आता है, वहां पर उसको एंट्री करके फिर आगे बढ़ाते हैं उसको। तो डॉकयार्ड में गए, सैन फ्रांसिस्को जो है वो पैसिफिक समुद्र के किनारे पे है, बहुत लंबा किनारा है, सिएटल से लेके सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, फिर सैन डिएगो, ऐसे बहुत लंबा प्रशांत महासागर का किनारा है, उसके बीच में ये सैन फ्रांसिस्को है। तो उस किनारे पे गए, समुद्र के गए, डॉकयार्ड पे गए और देख रहे थे, तो समुद्र के अंदर से एक रेड ओक वुड का लकड़ी जो है पूरा पेड़ बहते हुए आके समुद्र किनारे आके टिक गया था। कहीं से आया था पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि समुद्र से बहते हुए आया था। तो उस रेड जो होता है रेड वुड, वो बहुत मजबूत होता है। यहाँ पर ओक के वृक्ष होते हैं, रेड वुड के वृक्ष होते हैं, पाइन वृक्ष होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उस सब में से रेड वुड जो है बहुत मजबूत माना गया है। तो वो एक रेडीमेड वहां पर समुद्र से बहता हुआ आया, वहां पड़ा था, तो उन्होंने उठाया, अपने वैन में डाला और मंदिर में लेके आए। मंदिर में जहाँ पर मूर्ति नहीं थी, ऐसे ही अपने स्थान पे लेके आए सेंटर पे, और वहां पर कई महीने प्रभुपाद जी के निर्देश में उस मूर्ति को बनाया गया। और फिर प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार वो 3.5 फीट की जो मूर्ति बनी उसका प्रतिष्ठापना किया गया। तो उसकी स्थापना कैसे हुई, अभी आज आप जाएंगे हमारे इस्कॉन के मंदिर में, अरे पूरा दिन तक चलता है उसका विधि, एक दिन नहीं 3 दिन चलता है। जब मूर्ति बन के जयपुर से आती है तो उसके एक दिन तो उनको शयन कराते हैं, उनको नेत्र उन्मीलन करते हैं, उनका क्या क्या विधि है उसके अंदर, 3 दिन की फुल डे की विधि होती है, रात दिन चलते रहते हैं। उनको 50 भोग लगते हैं, 50 मंत्र बोले जाते हैं, उनको शयन बनाते हैं उनका, वो चक्र को स्थापन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सुदर्शन यज्ञ करते हैं और वैष्णव होम करते हैं, कितनी चीजें करते हैं। लेकिन उस समय अमेरिका में कोई नहीं था उनके साथ में, तो उन्होंने क्या बोला, कुछ मेहमानों को बुलाया जो लोग उनकी कथा सुनने आते थे, कुछ भक्त लोग ऑलरेडी साथ में रहते थे, सबको बुला के बोला एक बड़ा कैंडल जलाओ और सबके हाथ में एक कैंडल दो, और कुछ भक्तों को बोला कि आप कीर्तन करो, और बाकी लोगों को बोला कि एक एक लाइन से जाओ और एक कैंडल को ऐसे 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 दिखाया उन्होंने, ऐसे ऐसे भगवान के तीनों के ऊपर घुमाओ, पहले काले मूर्ति के ऊपर घुमाओ, फिर सफेद पे घुमाओ, फिर गोल्डन पे घुमाओ, और एक एक करके सब लोग। तो यही उनका प्रतिष्ठापना का विधि था, सिंपल, सबसे सिंपल और हृदय से। सभी जितने भी मेहमान आए थे, कोई पैंट में आए थे, कोई शर्ट में आए थे, कोई स्कर्ट में आए थे, कोई ब्लाउज में आए थे, कोई टी शर्ट में आए थे, कोई धोती कुर्ता में थे, ऐसे जितने भी लोग थे वहां पर, सब लोगों ने राइट से लेफ्ट से राइट में कैंडल घुमाया और प्रभुपाद जी ने बैठ के कीर्तन किया। सबसे आखिर में प्रभुपाद उठे, उन्होंने भी वो कैंडल जो है वो अच्छी तरह से आरती किया, फिर वो कैंडल पर उन्होंने कहा, ऐसा कैंडल हाथ में लिया और फिर हाथ घुमाया ऐसे ऊपर उसे और सर पे लगाया उन्होंने भक्त को समझाया, अभी कैंडल ले लो और सबके पास लेके जाओ और सबको समझाओ इसके ऊपर हाथ घुमाना है और सर को लगाना है। सब लोगों ने उसको कैंडल के ऊपर हाथ घुमाया और सर पे लगाया। उन्होंने कहा कि इस विधि को आरती लेना कहते हैं, आरती को स्वीकार करना, भगवान को अर्पण की गई जो आरती है, ये जो हम लोग घुमा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, इसको आरती कहते हैं। और ये आरती जो है, जब भी आरती होती है तभी भगवान के नाम का गुणगान होना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं उसको कीर्तन कहते हैं। ये जब आरती होती है तो ये कीर्तन का होना बहुत जरूरी है और जब आरती होती है उसके बाद में उस पर हाथ घुमा के सर पे लगाना होता है, जो हाथ को गरम गरम लगेगा वो गरम गरम यहाँ पे लगाना होता है, बस इसको इस तरह से आरती पूरी हो जाती है। उस तरह से हमारे जगन्नाथ जी का आविर्भाव यहाँ पर हुआ है, देखिए। हाँ, इसी अद्भुत तरीके से प्रभुपाद जी जो है उन्होंने जगन्नाथ जी को वहां पर स्थापन किया। और सबसे इस्कॉन संस्था में आज वर्ल्ड में कम से कम 500 मंदिर है, और 500 मंदिर में कम से कम एक मंदिर में 3-3, 2-2 ऐसे मिलके हजारों विग्रह हैं, सब जयपुर से यहाँ वहां से बन के वहां पर गए। लेकिन सबसे पहला विग्रह जो है वो जगन्नाथ जी का विग्रह है, वो रेड वुड में बनाया हुआ, भक्तों ने अपने हाथ से ना समझते हुए समझते हुए बनाया हुआ, रेड वुड से बनाया हुआ 3 विग्रह है, आज भी वहां विराजमान है। और सबसे पहली विदेश की रथ यात्रा जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई, वहां पर भक्तों ने अपने हाथ से रथ बनाया, और हाथ से रथ बना के सैन फ्रांसिस्को में जब पहली रथ यात्रा हुई तो सैन फ्रांसिस्को का जो सबसे मेन स्ट्रीट है वो बंद कर दिया गया था। अप्लाई करके गवर्नमेंट ने उन्हें वो मेन रोड जो है शहर का सबसे मेन रोड उसको क्लोज करके रथ यात्रा की तरह, और वो शहर का जो गवर्नर है, सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सभी लोग उस रथ यात्रा में आए थे, इतना भव्य रथ यात्रा हुआ। उसके बाद में जगन्नाथ जी इतने फेमस हो गए उस एरिया में कि वो दुकान में जो 3 गनी भर के आए थे ना खिलौने, वो खिलौने को खरीदना और अपने घर में रखना एक फैशन हो गया, सब लोग खरीद खरीद के अपने घर में रखने लगे, और भक्त लोग भी जगन्नाथ जी के विग्रह को ले लेके गले में लटकाने लगे, कोई चिकट पट्टी या कोई गम लगा के उसको अपने गले में लटका के घूमने लगे, ऐसा फैशन हो गया फैशन। अभी कभी कभी होता है ना अपने शहर में काला पट्टी बांधने का सर पे, ऐसा तो सब यंग लोग काला पट्टी लगाते हैं कॉलेज में, इधर लड़कियां लड़के ऐसा एक फैशन है उनका, है ना। कोई अलग टाइप का शर्ट पहनते हैं तो सब लोग वैसे ही पहनने लगते हैं, फैशन है। अभी आजकल क्या फैशन है, ब्लैक पहनना, सब लड़के लड़के ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहनते हैं आजकल, उनका एक फैशन है। क्या मालूम क्या उसके मन में क्या विचार है, आई डोंट नो। लेकिन सब लड़के लड़के काले कॉलेज में और फेस्टिवल में कोई कॉलेज में कोई हुआ उत्सव होगा तो ब्लैक पहन के जाते हैं, ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक पंजाबी ऐसा सब ब्लैक साड़ी पहन के जाते हैं। तो उस समय फैशन हो गया वो सैन फ्रांसिस्को में, वो कॉस्ट प्लस दुकान में जाना है, वो मूर्ति को लेना है और यहाँ पर चिपका के घूमना है। तो उस समय फिर क्या हुआ, वियतनाम का वॉर डिक्लेयर हो गया अमेरिका के साथ में। वियतनाम जो है दक्षिण अमेरिका में है और अमेरिका उत्तर दिशा में है, तो ये देश बहुत दूर था, युद्ध जिसके साथ हुआ है वो बहुत दूर था। ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान एक ही बॉर्डर में वहां युद्ध कर रहे हैं, कंट्री कोई दूर है, उससे युद्ध हो रहा है। तो उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि जितने भी जवान लोग हैं सबको पकड़ो, आर्मी भर्ती करो, हमको सेना बनानी है, सेना में बहुत लोग कम हैं। तो सब घर में जितने भी लोग हैं जवान 18 साल के ऊपर 24 साल के अंदर सबको पकड़ पकड़ के पुलिस आके लेके गए जबरदस्ती आर्मी भर्ती करने के लिए। तो भक्त लोगों के पास भी आए, वो जो भक्त बने हुए हैं सर मुंडवा के चोटी रखे मंदिर में हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं कोई भजन कर रहे हैं उनको भी लेके गए वो सब लुटा के। तो एक प्रभु जी थे उनका नाम था मधु द्विष प्रभु, ठीक है, उनको भी लेके गए लोग। तो उनके गले में ये जगन्नाथ जी थे, तो डॉक्टर सामने खड़ा किया उनको फिटनेस के लिए, फिटनेस करना होता है ना, फिटनेस के लिए बाद में कैसे लेंगे। डॉक्टर आया, सब लोगों ने बोला कि चलो कपड़े उतारो, खाली अंडरवियर पे खड़ा रहना आपको, मैं आपको तपासूंगा बराबर से फिट है तो अंदर ले लेंगे। लेकिन सब लोगों ने कपड़े वन बाय वन उतारे, सबका एग्जामिनेशन हुआ, इनका नंबर आया तो इन्होंने भी कपड़े उतारे। तो डॉक्टर ने कहा अरे गले में कोई बड़ा खिलौना लगा करके, बोले इसको उतारो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा रिलीजियस मतलब धर्म का श्रद्धा है, इसको नहीं उतार सकते मैं। बोले क्या मजाक कर रहे हैं, उतारो उसको, हमको आपको एग्जामिन करना है। डॉक्टर जब तपासता है तो कोई नाटक नहीं चाहिए उसमें, सब उतारने का तो उतारना बोलना चाहिए, सब दिखाना चाहिए उनको। तो ऐसे पकड़ पकड़ के बैठा, नहीं 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 नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने यहाँ वहाँ देखा बाकी लोगों को, नर्स थी डॉक्टर थे और भी, तो बोले इसको छोड़ दो, ये पागल है। ये पागल आदमी आर्मी में कैसा काम करेगा, ये लकड़ी की मूर्ति को ऐसा पकड़ के बोला मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये कैसे गन चलाएगा, इसको छोड़ो। तो तुरंत इतने खुश हो गए वो, ऐसे ही मूर्ति को पकड़ते हुए नाचते नाचते वहां से लेके मंदिर तक रोड पे नाचते नाचते गए, हरे कृष्ण मंत्र गाते गाते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे गाते गाते मंदिर पहुंचे। प्रभुपाद को बताया कहानी कि कैसे मैं वियतनाम में वॉर में आर्मी का सोल्जर बनने से बच गया। जगन्नाथ की कृपा से अभी वो बाद में संन्यास लिया, उन्होंने सन्यासी बने, वो गुरु है आज की तारीख में मधु द्विष प्रभु। हाँ, ये ऐसे अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं, इस्कॉन के अंदर इतने भक्त बने हैं उनके जीवन में ऐसी अद्भुत अद्भुत विचित्र कहानियां हैं जिसके द्वारा उन्होंने जगन्नाथ जी या और कोई भगवान के विग्रह हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हाँ, प्रत्यक्ष भगवान है ऐसा अनुभव किया है। अभी एक छोटी सी कहानी बोल के मैं आपको आज की कथा समाप्त करता हूँ कि कैसे जगन्नाथ कैसे भगवान जो हमारे हैं, जगन्नाथ नहीं अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं ना, वो नरसिंह भगवान के रूप में गए, कई सीताराम के रूप में है, कई राम लक्ष्मण के रूप में है, कभी राधा कृष्ण के रूप में है, कभी लक्ष्मी नारायण के नरसिंह भगवान के रूप में है, प्रहलाद के साथ में। तो एक लड़की भक्त बनी हुई है, मतलब परिवार भक्त है, छोटी सी लड़की उनकी है, वो घर के आंगन में खेल रही है ऐसे, और उनका घर का आंगन जो है वो हाईवे के पास में है, होता है ना कभी कोई ऐसा आपका घर जो टचिंग में हाईवे पे होता है, उनका बड़ा घर है उसके सामने बड़ा गार्डन भी है और उसके आगे हाईवे है। तो ये लड़की गेंद खेलते 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 आगे आगे गई, आगे गई तो हाईवे के पास में गई, और वो बच्चे वालों ने कैसे कितने खेल में घूम रहे थे, उनको क्या पता हाईवे है कि क्या है, वो तो गेंद में मन उनका मशगूल रहता है। हाँ, उनको जगाओ तो गेंद उनके मन मशगूल है तो गेंद आगे आगे पहुंचती है और गेंद हाईवे पे जाती है, लड़की उसके पीछे भाग भाग के जाती है। वहां से एक बड़ा ट्रक आता है जोर से स्पीड में, हमारा ऐसा रोड नहीं वहां पर होता है, वहां के रोड बहुत बढ़िया होते हैं, वहां के ट्रक भी 100-100 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं, इतना रोड उसका बढ़िया होता है, और कार जो है 120-150 किलोमीटर स्पीड से चलती है। वो हाईवे पे है तो एक ट्रक जो है इतना बड़ा कितना टन का वजन रहेगा उसका, तो सामान भर के फुल स्पीड में जा रहा है, उसमें बीच में लड़की गेंद पकड़ने को रोड में जाती है, जैसे ही ट्रक आता है तो लड़की हवा में उड़ती है ऐसे जोर से गोल ऐसे हवा में उड़ते हैं और रोड के उस साइड में जाती है, उसमें जैसे ही गिरती है उड़ के खड़ी होके मम्मी करके बुलाती है, उसको कुछ नहीं होता है, तब तक इनको पता चलता है कि ट्रक ने मेरी लड़की को उड़ा दिया और लड़की आकाश में उड़ गई, उस साइड भी गिर गई, पता नहीं जिंदा होगी, कितने फ्रैक्चर हो जाएंगे उसके, क्या होगा, अभी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इस चिंता में है। माता पिता जो है भाग भाग के रोड क्रॉस करके वहां पहुंचते हैं और वो भाग के मम्मी के गोद में आते हैं, मम्मी करके, ना कुछ नहीं हुआ, बोला क्यों होगा, जैसे ही ट्रक आया एक सिंग आया उसने मुझे उठाया और यहां छोड़ दिया, आया समझ में आपको कुछ? हाँ, उसके कंधे पर शेर के नाखून के निशान थे और थोड़ा थोड़ा एक एक दो बूंद खून भी आ रहा था उसमें से। लड़के को कोई दर्द नहीं हो रहा था, कोई कष्ट नहीं था, लड़की डर के मारे रो रही थी, कुछ नहीं उसको हो रहा है, उल्टा वो हंस रही है आनंद से। बोलते वो जो भगवान आए थे सिंह के रूप में, उसने मुझे उठाया अपने दिव्य हाथों से, प्रेम से उठाया, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए मुझे इस साइड छोड़ दिया और वो अदृश्य हो गए। तो माता पिता समझ गए कि नरसिंह भगवान ने अपने बेटे को दर्शन दिया और बचाया, उसके चिन्ह भी उसके शरीर पे थे। ऐसा है, हाँ, ये मत समझना कि ये कोई विदेशियों का हरे कृष्णा वालों का मंदिर है, हाँ, ये सब लोग भक्त हैं भगवान के, बड़ी प्रामाणिकता से भक्ति करते। डॉक्टर संखे हम लोग पालघर से लौट के आ रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कैसे अद्भुत भक्त लोग हैं, हाँ, पता नहीं कौन से देश में जन्म लिया है, कौन से कल्चर में जन्म लिया है, क्या बचपन में खाते थे पीते थे, क्या क्या करते थे, इनको भगवान का नाम कृष्ण का के भी मालूम नहीं है, और कौन से कल्चर से आ रहे हैं वो, और कैसे भक्त बने हैं, आज के तारीख में चाय भी नहीं पीते, लसन भी प्याज भी नहीं खाते। बोलते किसी भी जाति का जो बड़ा से बड़ा ब्राह्मण हुआ ना, एकदम बड़ा से बड़ा ब्राह्मण, हाँ, एकदम वेद जानता है, श्लोक जानता है, मंदिर का पुजारी है, ऐसा बड़ा बहुत साल से पूजा कर रहा है मंदिर की, उससे भी हरे कृष्णा मंदिर का सबसे जो निचला भक्त है, नया नया भक्त है, वो श्रेष्ठ है, क्योंकि इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त होने पश्चात भी लसन प्याज खाते हैं ब्राह्मण लोग, चाय पीते हैं, कभी कभी बीड़ी भी पी लेते हैं, आजकल तो सब कुछ करते हैं, दारू भी पीते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, लेकिन उस जमाने की बात कर रहे हैं जब बहुत स्ट्रिक्टनेस था बहुत, लेकिन तभी भी आप मुझे कोई भी एक ब्राह्मण दल लाके दिखाओ जो चाय नहीं पीता है। लेकिन हरे कृष्ण आंदोलन में जो भक्त बनता है वो चाय कॉफी लसन प्याज सब छोड़ देता है, शराब सिगरेट बीड़ी सब बंद कर देता है, और एकदम कहीं भी जाएगा तो पालन करेगा, ऐसा नहीं कि भाई अरे घर में होगा तो सब नियम पालन करेगा, लेकिन साउथ इंडिया में गया तो चाय पी के आएगा, क्या करेगा, सफर में हूँ यात्रा में हूँ तो पीना पड़ता है, कुछ मिलता नहीं उधर, ऐसा नहीं है, दुनिया में कहीं भी जाएगा और एकादशी रहेगा तो उपवास करेगा, वो बोलेगा ना अभी मैं टूर पे हूँ भी क्या उपवास करूंगा, सब खा लूंगा, बाद में अगली बार उपवास करूंगा, डबल उपवास करूंगा, ऐसा नहीं, स्ट्रिक्टनेस जो है वो आपको नजर आएगा, चार नियम पालन करने में, 16 माला करने में, दुनिया में कहीं भी जाएगा 16 माला करेगा, चार नियम पालन करेगा, भगवान की सेवा करेगा और बाकी धंधा भी करेगा, काम भी करेगा, टूर भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो हमने कहा कि ऐसे दिव्य हरे कृष्ण आंदोलन के हम सदस्य हैं, ये बड़े गर्व की बात है, बड़े आश्चर्य की और बड़े गर्व की और बड़े खुशी की बात है कि ऐसा आंदोलन जो है जिसमें शुद्ध शिक्षा प्राप्त हो रही है, हाँ, और सबसे घटिया से घटिया आदमी भी शुद्ध भक्त बन सकता है, ऐसी व्यवस्था इसके अंदर है, ऐसा फॉर्मूला बना के दिया है, चाहे वो चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जैपनीज हो, यूरोपियन हो, साउथ अफ्रीकन हो, या कोई देश ब्रह्म देश का हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, किसी भी देश का आदमी हो, अगर वो फॉर्मूला को अपनाता है तो वो शुद्ध भक्त बन सकता है, संत बन सकता है। तो प्रभुपाद जी आज नहीं है, आज प्रभुपाद जाने के बाद में जितने साल उन्होंने प्रचार किया था 12 साल, उसके 3 गुना साल गुजर चुके हैं, है ना, कितने साल हो गए, 77 में गए, वो कितने साल हो गए, 34 इयर्स हो गए उनके, प्रचार किया 12 साल, अभी 3 गुना साल हो गए उनके बाद में, लेकिन जब गए तब 108 मंदिर थे और 10,000 भक्त थे, और आज 500 मंदिर है और करोड़ों भक्त हैं, है कि नहीं, हाँ। तो ये इस आंदोलन की विशेषता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, या और भी कोई घटिया देश का हो, जाति का हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, चार नियम का पालन करता है, प्रसाद ग्रहण करता है, तो वो बहुत जल्दी से शुद्ध भक्त बन सकता है। उसमें फिर जाति का भेद नहीं है, जन्म का भेद नहीं है, कोई देश का भेद नहीं है, रंग का भेद नहीं है, कुछ नहीं है। और हरे कृष्ण मंदिर में कोई भी आओ, ब्राह्मण आओ, शूद्र आओ, देशी आओ, विदेशी आओ, काला आओ, गोरा आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग आओ, हरे कृष्ण मंदिर जप करो। ठाकुर भक्ति विनोद ने 100 साल पहले बताया था, ऐसा एक समय आएगा काले रंग के, गोरे रंग के, पीले रंग के, गेहूं वर्ण के, हर वर्ण के लोग एक साथ में आकर जगह जगह पर हाथ उठाकर कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज ये सत्य जो है, हमको भविष्यवाणी जो है, जो उन्होंने 100 साल पहले की थी, सब लोग उसका अनुभव कर रहे हैं। जगह जगह में, देश देश में, विदेश में, सब जगह पर अलग अलग जाति के धर्म के लोग जो है एकत्र होकर हरे कृष्ण मंदिर में भगवान का नाम ले रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था, स्वयं भगवान अवतार लेकर आए थे, पृथ्वी से आते सर्व नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मरो नाम, कि पृथ्वी के हर देश में, हर नगर में, हर गांव में, हर सड़क पे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग रंग के लोग एकत्र आएंगे और मेरे नाम का जप करेंगे। ये भविष्यवाणी आज सत्य होते हुए नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने बड़ी उम्र में वहां से वहां गए और उनके चमत्कार की वजह से आप देश देश में, गांव गांव में, गली गली में भगवान का नाम का कीर्तन हो रहा है। और ऐसे दिव्य आंदोलन का हम लोग सदस्य है, ये बड़े गर्व की बात। ऐसा मत समझो कि ये जू के फैक्ट्री में बनाया गया मंत्र है और सबको बांट रहे हैं उसको। पूरे वर्ल्ड के अंदर अब इसका प्रचार हो रहा है, जगह जगह भगवान हरे कृष्ण मंत्र का लोगों का, लोग उसका कीर्तन कर रहे हैं। कोई चाइनीज है, कोई चपटे चेहरे के हैं, कोई सीधे चेहरे के हैं, कोई गोल चेहरे के हैं, कोई त्रिकोणी चेहरे के हैं, कोई स्विट्जरलैंड की भाषा बोलते हैं, कोई चाइनीज भाषा बोलते हैं, कोई अंडरग्राउंड छुप छुप के कर रहे हैं क्योंकि उनके देश पे विरोध है उस गवर्नमेंट का। हाँ, चाइना में लोग को परमिशन नहीं है, लेकिन चाइना में हजारों भक्त हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं कि वो भक्त हैं, अपने घर में भजन करते हैं, पूजन करते हैं। भारत में जब आते हैं यात्रा करने के लिए धोती कुर्ता पहनते हैं, वहाँ कभी भी नहीं पहनते हैं। भारत में आते हैं, यहाँ खरीदते हैं, यहाँ पहनते हैं और यहीं छोड़ के वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके देश में उसको पहनने का अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी भक्त बने हुए हैं, जान की बाजी लगाकर, हाँ, जीवन मृत्यु का संघर्ष करके भी भगवान का भक्ति उन्होंने अपनाया है प्रभुपाद जी की कृपा से। इसलिए आप लोग भक्ति विधान में काम करते हो, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये पूरे विश्व का जो आंदोलन है उसका एक हिस्सा है। इसमें सारे विश्व, आप देखते हैं ना कितने फॉरेनर लोग यहाँ पर आते हैं, वो डॉक्टर वैष्णवी कृपा यहाँ पर देखते हैं ना, उसको कितने महीने हो गए, क्यों आई वहाँ पर वो इंटर्नशिप करने के लिए। उनको बहुत, दुनिया में बहुत हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर वो इंटर्नशिप कर सकती है, लेकिन उनको, वो स्वयं भक्त बनी हुई है, वो ब्राजील की है माता जी, ब्राजील के देश से डॉक्टर बनी हुई है और इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पर आई है और 8 महीने से यहाँ पर भाड़े का घर लेकर अपनी माता को लेकर किचन सेटिंग किया है, यहाँ पर रहकर वो 8 महीना ट्रेनिंग ले रही है। केवल मेडिकल का नहीं, सबका इंटरव्यू लिया उसने, कैसे आप लोग हरे कृष्ण का यहाँ पर जपा करवाते हो, वैसे उत्सव करते हो, स्पिरिचुअल केयर क्या है, ये सब वो स्टडी किया उससे पूरा। उनके गुरु हैं धन्वंतरी महाराज इस्कॉन के, वो भी ब्राजील के ही हैं, वो भी सन्यासी गुरु बन गए हैं। वो उनको लिखा उन्होंने कि मुझे आपको सब आके बताना है, बोले आप बस बताओ, आप उनका इंटरव्यू ले लो, जितने जितने लोग वहां पर बैठे हैं उनका इंटरव्यू ले लो और वो वीडियो आके हमको दिखाओ डायरेक्ट एकदम, आपके मुख से सुनने के बदले में उनके मुख से ही सुनेंगे उस हॉस्पिटल के बारे में। तो कई दिन तक उन्हें शूटिंग किया हुआ है, कई घंटों का शूटिंग किया हुआ है। अभी वो सब शूटिंग जो है, आप लोगों का जो गौरव है, जो आप लोग यहाँ पर बड़ा महान कार्य कर रहे हो, उसका प्रचार जो है वो ब्राजील में होगा। अभी जब वो पहुंचेगी अपना इंटर्नशिप खत्म करके, तो सब भक्त इकट्ठा होंगे और उनको वीडियो दिखाएंगे, उसका वर्णन करेंगे भक्ति योद्धा हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग स्पिरिचुअल केयर देते हैं और कैसे कैसे जीवन परिवर्तन होता है, इस सबका वर्णन जो है आपको पता होना चाहिए। आप लोग कोई साधारण काम नहीं कर रहे हो, भक्ति विधान में नौकरी करते हुए आप बड़ा दिव्य कार्य कर रहे हो, भगवान की सेवा में कर रहे हो। इसकी महानता को समझते हुए दिलो जान से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आपका काम का प्रचार और गौरव जो है पूरे विश्व में फैल रहा है। विश्व के कई कई बड़े बड़े अधिकारी लोग यहाँ पर मिलने को आते, देखने को आते हैं कि क्या कर रहे हो यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके आनंद के लिए अभी जगन्नाथ जी का उत्सव भी मनाया जाएगा 25 जून से 2 जुलाई तक। क्लीनलीनेस वीक, स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। 2 जून को मंदिर के साथ साथ गुंडीचा मार्जन का उत्सव होगा। 3 जुलाई को मंदिर का रथ यात्रा होगा और 6 जुलाई को भक्ति वेदांत अस्पताल का स्पेशल रथ यात्रा, ओनली फॉर भक्ति वेदांत स्टाफ मेंबर्स और पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स। हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां महारानी की जय। थैंक यू वेरी मच।